नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
ज़िंदगी वीरान है यीशु नाम। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की कृपा से कुशल पूर्वक हैं और इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में तंबू के बनाए जाने, पर्दे, तख्तियां और कड़े, बाहरी और भीतरी पर्दे को बनाया जाना, संदूक का बनाना, दया का सिंहासन, मेज की रोटी, दीवट, धूप वेदी, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप के बारे में देखा था। आज हम होम बलि की वेदी, पीतल का हौदी, आंगन और लोगों के दान को सीमित या नियंत्रण करने के विषय में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया ताकि फिर से एक बार आपके जीवित वचन का हम अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को आप खोल दें, उनके एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि प्रभु जब आपके वचन हम सीखते हैं तो यह हमारे कानों में होकर हृदयों तक पहुंचने पाए, हमसे बातचीत करने पाए। और होने दे पिता परमेश्वर, हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें और इसके द्वारा से हम आपको आदर देने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनिया चिंताओं से और डिस्टर्ब करने वाली हर एक बुरी युक्तियों से आप सबकी रक्षा करें। जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, प्रभु आप उनके भी सुधि ले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर हैं। आप प्रत्येक की सहायता करें इस समय को और हमें से प्रत्येक को, विशेष करके हमारे श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु प्रत्येक पर अपनी शांति दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इस अध्याय में भी हम तंबू के बारे में ही देखने जा रहे हैं। 25वें अध्याय के आरंभ में ही तंबू के लिए नक्शा प्रत्येक विस्तार के साथ दे दिया गया था कि इसे कैसे बनाना है। अब बसलेल और उसके सहायक तंबू का निर्माण कर रहे हैं। यहां तक कि अध्याय 38 में तंबू बनकर तैयार हो गया है जैसा कि मैं समझता हूं, परंतु यह अभी तक सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। यह अध्याय विशेषकर बाहरी आंगन पर विशेष ध्यान देता है। मित्रों, जैसा कि हम गिनती की पुस्तक में देखेंगे कि जब बादल का खंभा तंबू के ऊपर से उठने लगता था तब इसराइली वहां से प्रस्थान करते थे। याचकों के कंधों पर रखा गया वाचा का संदूक जुलूस की अगुवाई करता था और जब बादल ठहर जाता था तो इसराइली अपना तंबू वहीं खड़ा करते थे और वाचा का संदूक मरुभूमि की बालू पर रखा जाता था और उसके चारों ओर तंबू खड़ा किया जाता था। सोने से मढ़ा हुआ तख्ता उसके चारों ओर रखा जाता था। छड़ तख्ते की कड़ी से होकर जाते थे और वह तंबू को एक साथ जोड़ते थे। तब तख्ते के ऊपर चार आवरण लगाए जाते थे, सनी कपड़े, बकरी की खाल जो लाल रंग से रंगी हुई थी, मेढ़ों की खाल और सुरक्षा के लिए विज्जू या सील मछली की खाल लगाई जाती थी। तंबू की सुंदरता अंदर से या अपने आप में ही दिखनी होती थी। इसकी प्रत्येक चीज आराधना या उपासना के लिए होती थी, स्तुति और परमेश्वर की सराहना के लिए होती थी और सारी आशीषें व्यक्तिगत होती थी। मित्रों, बाहरी आंगन सनी के कपड़े के द्वारा घेरा गया था जो 100 और 50 हाथ के घेरे का था और उसमें कांसे की वेदी और हौदी थी। यही वो स्थान था जहां पर पाप के प्रश्नों का समाधान होता था। पापी द्वार के पास आता और एक पापी की तरह खड़ा होता था और तब याजक उसकी अगुवाई बाहरी आंगन की ओर करता था। तब पापी जिस पशु को लाता था उसके सिर पर अपना हाथ रखता था, चाहे वह मेमना, बकरी या बैल हो। तब उस पशु को वेदी पर बलि चढ़ाया जाता था और यह काम याजक करता था। व्यक्तिगत रूप से लोग यहीं तक आ सकते थे और यहां से वह अपने याजक तक जाता था और याजक हौदी के पास जाकर अपने को शुद्ध करता ताकि वह पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। पवित्र स्थान में तीन सज्जा सामग्री रखे होते थे, सोने की दीवट, मेज की रोटी और धूप की वेदी। ये सब कुछ उपासना को दर्शाते थे। आगे हम देखते हैं कि एक पर्दा था जो पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग करता था, और याजक उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह महापवित्र स्थान में नहीं गया जहां पर वाचा का संदूक और दया का सिंहासन था, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ महायाजक प्रवेश करता था, और वो भी साल में एक बार पूरे राष्ट्र की ओर से जाता था। अब हम देखेंगे होम बेली की वेदी। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। मित्रों, कांसे की वेदी पर दोषी चढ़ाया जाता था और पाप का न्याय होता था। यहाँ पर यह व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्र पाप की समस्या के समाधान के लिए सामने आता था। जब यह वेदी बनाई गई तो दूसरी कोई भी वेदी नहीं बनाई जा सकती थी। यहीं से परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता था, और इसके अलावा जहां कहीं भी वेदी बनाई जाती तो वह ईश निंदा होती। मित्रों, यह विशिष्ट स्थान पर थी क्योंकि यहां पर पाप की समस्या के प्रश्नों का समाधान होता था। वहां पर उपासना या आशीष कुछ नहीं हो सकती थी जब तक कि हर कोई इस कांसे की वेदी के पास नहीं आता है। मित्रों, वेदी पर की सिंह सामर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं। यीशु मसीह की योग्यता को दर्शाते हैं कि वह बचा सकते हैं। इस वेदी के बारे में बहुत से निर्देश और विवरण दिए गए हैं कि कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं या उसकी देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित बर्तन, कड़ाही, तख्ता और घेरा आदि होना चाहिए। जो भी हो, एक महत्वपूर्ण बात जिसे याद रखना है कि इसका काम पाप की समस्याओं का समाधान करना है। अब हम आगे देखते हैं पीतल की हौदी। हम निर्गमन 38 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। मित्रों, यहाँ पर जिन दर्पणों की बात की जा रही है वे कांसे के बने होते थे, जो अच्छी तरह चमकाया हुआ होता था। महिलाएं बदली नहीं है, उन दिनों में भी वे दर्पण साथ रखती थी और इन्हीं दर्पणों से यह हौदी बनी थी। यह दर्पण परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। बाइबल ही है जो विश्वासी को उसके शुद्ध होने की आवश्यकता को दिखाती है, और हौदी वहां पर शुद्धिकरण के लिए ही रखी गई थी। मित्रों, आज हमारे स्नान घर में यह चीज पाई जाती है। हमारे घर में दर्पण होते हैं और ठीक उसके नीचे हाथ धोने की हौदी होती है। दर्पण हमारे गंदगियों को साफ नहीं करते, और न ही व्यवस्था आपको बचा सकती है। आप उसके विरोध में जो कुछ भी करना चाहते हैं या जितना भी रगड़ना चाहते हैं कर लें, पर गंदगी बनी रहती है। परंतु एक सोता है जो लोहू से भरा है, जो इमानुएल की नसों से बहता है। जो पापी उसके नीचे आते हैं तो वह धारा उनके सभी पाप और अपराधों को धो डालता है, अर्थात जो पापी उसमें स्नान करता है वह निर्दोष हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं आंगन। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय उसके 9 पद से 11 पद में लिखा है, फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म शनि के कपड़े के थे, और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी, और खंभों की खुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी, और उत्तर अलंग के लिए भी 100 हाथ पर्दे बने, और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। मित्रों, बटी हुई महीन मलमल यीशु मसीह की मनुष्यत्व के होने के बारे में बताती है, और वास्तव में यह मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है। एक बार मैंने एक प्रचारक को संदेश देते हुए सुना कि हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करना है और संसार में शांति आ जाएगी, चाहे आप मसीह के ईश्वरत्व का इनकार भी क्यों ना कर दें। मित्रों, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए लहू को छोड़कर मनुष्य के लिए कोई भी शांति नहीं दे सकता है। वह मलमल का बाड़ा जो मसीह के मनुष्यत्व को दर्शाता है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। मित्रों, मसीह का जीवन हमको नहीं बचाता है, यह हमें दोषी ठहराता है। यह मसीह की मृत्यु है जो हमें बचाती है। यदि हमारे पास ऐसे प्रचारक हैं जो संकीर्ण या रूढ़िवादी होने का ढोंग या दिखावा करते हैं और संदेश देते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि संसार में ऐसे बहुत से संदेश आज पाए जाते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन और विशेषकर तंबू एक तस्वीर या प्रतीक की पुस्तक है। यदि आप इस तस्वीर को देखते हैं या देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मसीह का जीवन और शिक्षा आपको नहीं बचा सकती है। हम इसके साथ आरंभ करते हैं कि आप उसके जीवन की ऊंचाई या उसके शिक्षा को नहीं माप सकेंगे। कई वर्षों से उदारवादी लोगों के द्वारा व्यर्थ की बातों को रखा गया है और आज हमें यह समस्या में डाल रखा है। यही समय है कि कोई इसे सही पंक्ति में रखता और हमें सत्य को बताता है। मित्रों, यीशु की शिक्षा मात्र आपको नहीं बचा सकती है, परंतु क्रूस पर मसीह की मृत्यु आपको बचाती और उद्धार देती है। यही कारण था कि वहां पर कांसे अर्थात पीतल की वेदी रखी गई थी। सफेद मलमल का बाड़ा मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है और परमेश्वर को मनुष्य से। यद्यपि तंबू के कड़े चांदी के थे और बाड़ा के लिए कड़े पीतल अर्थात कांसा के थे। पीतल को हमने पहले ही देखा है कि यह न्याय का पात्र है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1:15 में मसीह के चित्रण को हम पाते हैं जो उसके पांव को चमकदार पीतल के जैसे दर्शाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप का न्याय होना चाहिए। मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि वह एक पापी है और वह परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उसके पाप के प्रश्न का समाधान या हल नहीं हो जाता। मित्रों, खंभों के हुक और पट्टिका चांदी के थे। जो भी हो, चांदी छुटकारे का धातु है। बाहरी आंगन के घेरे ने मनुष्य को बाहर ही रखा, परंतु परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया ताकि वह अंदर प्रवेश कर सके। उसने पाप का न्याय करने का मार्ग ढूंढा और मनुष्य के लिए छुटकारे का प्रबंध किया ताकि वह मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहन सके। यह क्या ही अद्भुत तस्वीर है। आप तंबू की ओर देखकर भी सुसमाचार को पा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इसे चित्रण या तस्वीर के रूप में दिया है। मित्रों, आंगन में प्रवेश का एक द्वार था। मनुष्य घेरा को लांघ कर पार नहीं हुआ, उसे द्वार में से होकर आना है। हम निर्गमन 38:18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, वैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी थी। मित्रों, सभी प्रकार की सामग्री और रंग मसीह के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। हम पहले ही इसे देख चुके हैं, फिर भी इसे दोहराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नीला रंग यह दर्शाता है वह स्वर्ग से एक ईश्वरत्व के रूप में आया। लाल रंग उसके मनुष्यत्व को बताता है जो उसने मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया, और नीला और लाल रंग मिलकर बैजनी बनते हैं जो उसके राजाधिकार को बताती है। वह यहूदियों का राजा के रूप में पैदा हुआ था। मित्रों, तंबू का फाटक बाहर के बाड़ा की ऊंचाई के बराबर ही था। यह लगभग 7.5 हाथ ऊंचा था और यह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए भी उस पार देखना आसान नहीं था। आंगन में जाने का और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था सिवाय फाटक के। यह एक चौड़ा फाटक या द्वार था, इतना चौड़ा कि कोई भी पापी इसमें प्रवेश कर सकता है, परंतु केवल यही मात्र द्वार है जिसमें से होकर कोई भी प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे मित्रों, मैं आंगन के भीतर के फाटक के बारे में सोचना पसंद करता हूं जो एक मार्ग है। मसीह ने भी कहा है कि यदि आप परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे कहने का मतलब कठोर होना नहीं है, परंतु आराधना जो कलीसिया में होती है, मसीह कौन है उसका इनकार करती है और जो उसने किया है एक सच्ची आराधना नहीं है। इसलिए आपको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। आप उसके ईश्वरत्व का इनकार नहीं कर सकते हैं और उस सत्य को कि वह आपके लिए मरा और आप अभी भी उसकी आराधना करते हैं। यह बहुत से लोगों के लिए अच्छा होगा यदि वे कलीसिया में कभी नहीं गए। यह कुछ कलीसिया की बात है, उनकी अपनी स्थिति अच्छी नहीं है और जिस कलीसिया में वे जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह का निरादर किया जाता है और उसकी ईश्वरत्व का इनकार किया जाता है। मित्रों, तब हम अंतिम प्रवेश द्वार में आते हैं जो किसी एक को महापवित्र स्थान में लाता है, पर्दे में से होकर प्रवेश कराता है, जो मसीह के क्रूस पर जान देने को दर्शाता है। जब वह क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक बीचों बीच दो भाग में फट गया, जो यह दर्शाता है कि अब परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग खुल गया है। वही जीवन है, मसीह मार्ग सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। यूहन्ना 14 उसके 6 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, इसके आगे मैं आपका ध्यान एक इसराइल के व्यक्तिगत प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरा इसराइल राष्ट्र को पुत्र कहा गया है, परमेश्वर ने कभी भी एक इसराइली को पुत्र नहीं कहा। तो प्रश्न यह था और आज भी है कि यहूदी कौन है? क्या एक यहूदी जो यहूदी ही पैदा हुआ या उसका धर्म उसे यहूदी बनाता है? पुराने नियम में एक यहूदी होने के लिए आपको यहूदी ही जन्म लेना था और परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान बनाया जिससे कि सब लोग छुड़ाए जाएं। मित्रों, जिसका मतलब है कि प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से नया जन्म लेना है। इसराइल एक चुना हुआ राष्ट्र था, परंतु प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से छुटकारा पाना था। हम निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 की कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी, अर्थात जिसने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 603,550 पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल जो एक बेका होता है मिला। मित्रों, यहूदी चांदी लेकर आए क्योंकि यह छुटकारे का धातु था। प्रत्येक इसराइली का छुड़ाया जाना जरूरी था ताकि वह स्वीकार किया जाए। हम सब मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, जो चांदी और सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। अब प्रत्येक इसराइली नहीं बचाए गए थे, केवल राष्ट्र के बचे और छूटे हुए लोग ही बचाए गए थे। मित्रों, जिस प्रकार से कलीसिया के सभी सदस्य नहीं बचाए गए हैं या उद्धार पाए हैं, वही स्थिति इसराइलियों की भी थी। आज कलीसिया में बहुत थोड़े ही प्रतिशत में लोग उद्धार पाए हैं। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति ने एक बार कहा कि वह और उसकी पत्नी एक लंबे समय से कलीसिया में आ रहे हैं और अन्य ढोंगियों के साथ हम भी बैठते थे। हम में से कोई भी उद्धार या नया जन्म पाया हुआ नहीं था। हम सिर्फ सामने बैठते थे और सूर्य के डूबने से पहले ही हम सब शराब के नशे में धुत हो जाते थे। मित्रों, कलीसिया का सदस्य होना इन दिनों में अधिक मायने नहीं रखता है जिसमें हम लोग रहते हैं। आपको छुटकारे की आवश्यकता है और इसराइल के बच्चों को भी छुटकारा पाना आवश्यक था। हम निर्गमन 38 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किकार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी एक एक किकार की बनी। हम देखते हैं कि खांचा छुटकारे के पैसों से बनाया गया था। यह वह स्थान है जहां तंबू को सही स्थान पर रखा गया। प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से उस छुटकारे को स्वीकार करना है जो मसीह यीशु में है। आपको छुटकारे की कीमत चुकानी है, वह क्या है? मित्रों, यह सोना या चांदी नहीं है। इसकी एक ही परिस्थिति है कि आपको प्यास होना है। क्या आप जीवन के सोते से पानी पीना चाहेंगे? यह मुफ्त है, इसका कोई कीमत नहीं है। उधार मुफ्त में है, परंतु यह सस्ता भी नहीं है। प्रत्येक के लिए परमेश्वर को बहुत महंगा पड़ा है। उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया और हमारे छुटकारे की कीमत को चुका दिया। हम सब उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। मित्रों, निर्जन प्रदेश में छुटकारा इसराइल राष्ट्र के ऊपर एक दबाव था, परंतु जब उन्होंने भूमि में प्रवेश किया तब यदि वे उन छुड़ाए हुए लोगों में अपने को गिनवाना चाहते थे तो उन्हें छुटकारे की कीमत चुकानी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए पहले से ही सब कुछ चुका दिया गया है। अब यहाँ कोई भी पैसा की जरूरत नहीं है, अर्थात पैसा नहीं लगता है, इसका कोई कीमत नहीं है, परंतु आपको इसके लिए प्यास होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप एक पापी हैं और आपको इसकी आवश्यकता है? यदि ऐसा है तो अब आइए, क्योंकि कीमत पहले ही चुका दिया गया है। मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को आपके लिए बहा दिया है, जो आपको इस योग्य बनाता है कि आप परमेश्वर के पास आएं और मसीह में होकर उसके द्वारा स्वीकार किए जाएं। मित्रों, यह हम सबके लिए क्या ही अद्भुत बात है कि हमें हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी ने हमारे पापों के बदले में अपनी जान देकर कीमत चुका दी है। आज सिर्फ मुझे और आपको अपने पापों को उसके सामने स्वीकार कर लेना है, अर्थात मान लेना है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। तब वह आपके पापों को क्षमा कर आपको शुद्ध कर देंगे। आपको उसे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास आएं। वह आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मित्रों, आज संसार में लाखों और करोड़ों लोग उद्धार की तलाश में हैं और उद्धार पाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी मुफ्त में उद्धार को प्राप्त करें? आज थोड़ा समय रुककर अवश्य विचार करें, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से समय निकल जाए और आप पछताने पर भी इसे ना पाएं। इससे पहले कि ये बातें हो, आप निर्णय ले लें। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही आत्मिक आशीष प्राप्त किया है। सदा प्रभु की संगति में बने रहें और जीवन में उसके शांति का अनुभव करते रहें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो आज निर्णय ले रहे हैं, आप प्रत्येक की सहायता करें, उन्हें आशीष दें ताकि वे भी उस उद्धार के आनंद को पा सकें जिसे आप उनके जीवन में देना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। दा